तो हर एकादशी पर कई महीनों से हम श्री संप्रदाय के आचार्यों के बारे में चर्चा करते आए हैं, विशेष करके श्री रामानुजाचार्य। पिछली एकादशी को चर्चा ये चल रही थी कि यमुनाचार्य के वैकुंठ लौट जाने के बाद श्रीरंगम में भक्तों को लगा कि यहां सब कुछ खाली खाली लग रहा है, कोई आचार्य चाहिए। वहां जो आचार्य थे बड़े अच्छे भक्त थे, परंतु जिस तरह से यमुनाचार्य शास्त्रों का उल्लेख करते थे, जिस तरह से वो प्रवचन दिया करते थे, समझाया करते थे भक्तों को, अब वैसे कोई नहीं रहा। महापूर्ण उन्होंने जाकर रंगनाथ जी से प्रार्थना की कि आप किसी न किसी तरह से रामानुज को कांचीपुरम से यहां भेज दीजिए। रंगनाथ ने उनको एक तरकीब बताई, कहा कि यमुनाचार्य के पुत्र वररंग को आप भेज दो वरदराज जी के पास में। वरदराज भगवान, जिनका मंदिर कांचीपुरम में है, सुंदर भजन गाकर वो वरदराज जी को प्रसन्न करेंगे। फिर उनसे आप ये प्रार्थना कीजिए कि वो वहां से रामानुज के भेजे, क्योंकि जब तक वरदराज जी की अनुमति नहीं होगी तब तक रामानुज कांचीपुरम छोड़कर यहां नहीं आएंगे। तो ठीक ऐसे ही हुआ, वरदराज बड़े प्रसन्न हुए और फिर रामानुज चले आए श्रीरंगम। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, रामानुज भी स्वतः प्रसन्न हो गए और जगह जगह से वैष्णव वहां आने लगे श्रीरंगम में। और इस तरह से समय बीत गया और फिर रामानुजाचार्य के मन में इच्छा हुई कि उनके जो भाई थे गोविंद, जो अभी शैव बन गए थे, शिव भक्त बन गए थे, जो कालहस्ती में रहने लगे थे, उनको भी वैष्णव बनाया जाए। तो उन्होंने श्री शैलपूर्ण, जो कि वैसे उनके मामा थे, सन्यासी थे और यमुनाचार्य के शिष्य थे, उनको उन्होंने पत्र भेजा, जिसके माध्यम से उन्होंने उनको निवेदन किया कि वो जाकर कालहस्ती में गोविंद को भक्त बनाए। श्री शैलपूर्ण ने ऐसे ही किया, वहां गए, गोविंद को भक्त बनाया और फिर गोविंद श्री शैलपूर्ण में ही अपने गुरु श्री शैल में वहां पर रहने लगे। कालहस्ती के पास एक स्थान था श्री शैल, जो तिरुपति है, वहां पर श्री शैलपूर्ण निवास किया करते थे। तो गोविंद भी वहां पर रहने लगे। इसके बाद में रामानुजाचार्य ने अपने गुरु महापूर्ण के साथ पढ़ाई, वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन फिर से शुरू कर दिया। कई महीने ऐसे बीत गए, फिर महापूर्ण ने उनको और एक महान वैष्णव के पास भेजा जिनका नाम था गोष्ठीपूर्ण। और महापूर्ण ने उनको आदेश दिया कि जाकर आप उनसे वैष्णव दीक्षा ले लो, लेकिन गोष्ठीपूर्ण इनकार करने लगे। 17 बार ऐसे हुआ, लेकिन हर बार गोष्ठीपूर्ण ने कहा कि मैं दीक्षा नहीं दे सकता। हालांकि स्वयं जब रंगनाथ जी ने उनको आदेश दिया पुजारी के माध्यम से कि आपको रामानुज को दीक्षा देना चाहिए, लेकिन फिर भी गोष्ठीपूर्ण के मन में यह विचार था कि जब तक कोई पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता मन से, इंद्रियों से, कैसे हम उसको वैष्णव दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन खैर, अंततः बड़े प्रसन्न हुए गोष्ठीपूर्ण रामानुज की भक्ति से और उनको वैष्णव दीक्षा दे दी। दीक्षा के समय जो मंत्र दिया, उनको कहा कि यह बहुत गुप्त मंत्र है, यह मंत्र आपको किसी को बोलना नहीं है, इसलिए अगर आप बोलोगे किसी को तो बहुत बुरा होगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। और यह मंत्र का उच्चारण करके कोई भी व्यक्ति मुक्त होकर वैकुंठ लौट के जा सकता है। तो रामानुजाचार्य ने यह सुना और जैसे ही बाहर गए तो उनके मन में विचार आया कि अगर ये मंत्र सबको मुक्त करके वैकुंठ भेज सकता है तो मुझे सारे विश्व भर ये मंत्र फैलाना चाहिए। फिर वहां जिस गांव में गोष्ठीपुण रहा करते थे उस गांव में विष्णु मंदिर था। विष्णु मंदिर की दीवारों के ऊपर चढ़कर वो जोर जोर से घोषणा करने लगे कि आओ आओ गांव के निवासियों आप आओ, आपको कुछ बहुत ही मूल्यवान वस्तु में देना चाहता हूं जिससे कि आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो सभी लोग आए, बड़े संख्या में आए और फिर रामानुजाचार्य ने वो मंत्र उनको दिया, ओम नमो नारायणाय, और सबने उनके पीछे ये मंत्र का उच्चारण किया और दिव्य आनंद की अनुभूति की। इस तरह से सारे लोग भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। उधर गोष्ठीपूर्ण को खबर पहुंच गई कि रामानुज ने क्या किया है, आग बबूले हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। और जब रामानुज वहां उनको खुशखबरी पहुंचाने गए तो खुशखबरी तो क्या, वो तो कितने नाराज थे कि उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे मिला ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, इससे भला ये कि मैं यहां रहूं नहीं, तुम चले जाओ यहां से। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ऐसे आज्ञा का उल्लंघन करने से तुम्हें नरक गति की प्राप्ति होगी? तो रामानुज ने कहा, हां मैंने बड़े गौर से इसका चिंतन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरे अकेले के नरक जाने की वजह से अगर ये लाखों लाखों लोग इनका उद्धार हो जाए तो फिर मैं तैयार हूं। मेरे जैसे क्षुद्र जीव की क्या कीमत है, लेकिन मेरे एक जीव की कीमत पर अगर इतने लाखों लोग वैकुंठ चले जाएं तो कितनी अच्छी बात है। तो मैं जानता हूं कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं नरक जाऊंगा, लेकिन मैं तैयार हूं। तब गुरु ने यह बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए, आलिंगन किया उनको और कहा कि वास्तव में मैं तुम्हें समझा नहीं, तुम वास्तव में भगवान विष्णु के एक महान भक्त हो, उनके दूत ही हो। इस तरह से रामानुजाचार्य ने अपनी करुणा अनुकंपा दिखाई। उधर रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे कुरेश और दाशरथ, फैंस, उन्होंने आके रामानुजाचार्य से एक दिन पूछा कि मुझे सर्वधर्मान परित्यज्य ये श्लोक का जो गुह्य अर्थ है वो बताइए। फिर रामानुज ने उनको कहा कि जब तक आदमी एक साल ऐसे तपस्या नहीं करता तब तक उसे ये मंत्र मैं समझा नहीं सकता। तो कुरेश ने कहा कि एक साल मैं जीऊंगा कि नहीं क्या पता, ये संसार में सब कुछ भी हो सकता है। तो फिर रामानुज ने कहा ठीक है, एक महीना तुम भिक्षा मांगते रहो, तुम सब जगह जाके माधुकरी करना और फिर मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें ये गुह्य बात बताऊंगा। फिर रामानुजाचार्य ने कुरेश को ये श्लोक का गुह्य अर्थ बता दिया। उधर उनके दूसरे शिष्य दाशरथ वो भी आए वहां पर, लेकिन उनको नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप जाके गोष्ठीपूर्ण से ये मंत्र सीखो, ये श्लोक का अर्थ सीखो। गोष्ठीपूर्ण जी को पता चल गया कि क्यों रामानुजाचार्य उनको भेजा है, उनके सानिध्य में वहां दाशरथी रहे। फिर कई महीनों के बाद जब गोष्ठीपूर्ण को लगा कि अभी ये ठीक हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर घमंड था दाशरथी के अंदर, तो फिर बाद में उन्होंने रामानुज के पास में फिर से उनको भेज दिया। उसी समय महापूर्ण की कन्या पुत्री वहां पर आई, कोई शिकायत लेकर, कोई दुख था उनको, घर में उनके कोई रसोई बनाने वाला नहीं था, बहुत परिश्रम हो रहा था। तो रामानुजाचार्य दाशरथी को वहां भेज दिया और कई महीने वहां दाशरथी रहे और एक साधारण नौकर की तरह वहां पर काम करने लगे। और एक दिन जब एक कोई वैष्णव वहां पर आए थे, प्रवचन दे रहे थे उस गांव में, वहां दाशरथी ने उनके प्रवचन में जो गलतियां थी वो बताई। सभी को आश्चर्य हुआ और फिर जब उनको पता चला कि ये रामानुजाचार्य के शिष्य दाशरथी हैं तो और भी आश्चर्य हुआ। तुरंत दाशरथी को लेकर रामानुजाचार्य के पास गए और कहा कि अभी इनका घमंड बिल्कुल नहीं है, ये परमहंस हैं, इनको वापस ले लीजिए। तो रामानुजाचार्य ने स्वीकार किया, बड़े प्रेम से आलिंगन किया दाशरथी का। इस तरह से रामानुजाचार्य ने आगे चल के वररंग, मालाधर इन सब से भी उन्होंने उपदेश ग्रहण किया। इस तरह से यमुनाचार्य के जो पांच प्रमुख शिष्य थे, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, मालाधर और वररंग, इन पांचों से उन्होंने उपदेश ग्रहण करके ऐसे लग रहा था श्री रंगम में कि मानो एक दूसरे यमुनाचार्य वहां आए हैं, कि स्वतः यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के माध्यम से वहां उपस्थित है। और जब लोग आके रामानुजाचार्य की कथा सुनते तो उनके हृदय में जो भी दुख होता, जो भी चिंताएं होती, वो दूर चली जाती, किसी ऐसे दूर जगह में जाके बैठ जाते। तो ये कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा या सत्संग में आने का फल होता है। एक फल कि हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे भय वो दूर चले जाते हैं। तो ऐसे श्री रंगम में, रंगनाथ जी के पास में, रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ में निवास करने लगे। इधर श्री रंगम मंदिर का इतिहास ये जानना थोड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा सुंदर इतिहास है। हुआ ये कि रामानुजाचार्य के 300 साल पहले एक महान भक्त रहा करते थे जिनका नाम था तिरुमंगई। ये 12 आलवारों में से एक हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में कई महान भक्त हुए श्री संप्रदाय में, जिनको आलवार कहते हैं, और आलवारों में से तिरुमंगई एक थे। वैसे बचपन से ही वो भगवान विष्णु के बड़े शुद्ध भक्त थे, और उनकी आदत थी कि जगह जगह जाके तीर्थ स्थानों में वो भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। जब भी भक्ति भाव में वो आ जाते तो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, स्तुतियां वगैरह इनकी रचना करते। सारे भारत भर में वो घूमने लगे तीर्थ स्थानों में, और उनकी शुद्ध भक्ति देखकर कई लोग उनके प्रति आकर्षित होते। और हुआ ये कि 4 योगी थे जिनको विशेष विशेष सिद्धियां थी, विशेष शक्तियां हो गई थी उनको योग अभ्यास की वजह से। तो ये 4 योगी भी तिरुमंगई के शिष्य बन गए। और उनकी सिद्धियां कौन सी थी? जो पहले शिष्य थे जिनका नाम था तोला वसक्कन, उनको वाक सिद्धि थी। वाक सिद्धि मतलब ऐसा बोलते थे कि कोई उनका सामना वाद में नहीं कर सकता था, किसी को भी वाद विवाद में हरा सकते थे। इतनी मीठी बोली, इतने बुद्धिमान थे, ये सिद्धि उनको मिल गई थी, कोई भी उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता था। एक दूसरे शिष्य हुए जिनका नाम था तलुड़ुवन, उनकी एक विशेष कला थी कि वो किसी भी ताले को बिना चाबी के खोल सकते थे, ये सिद्धि उनको प्राप्त हो गई थी। तीसरे उनके शिष्य थे जिनका नाम था निजलाय मिथिप्पन, उनकी भी एक विचित्र शक्ति थी, किसी के छाया के ऊपर अगर वो पैर रख देते तो आदमी हिल नहीं सकता था। मतलब छाया को पकड़ लिया तो आदमी हिल नहीं सके, जैसे आदमी को ही ताला मार दिया, ये शक्ति थी उसके अंदर। और एक शिष्य हुए उनके निर्मल नड़प्पन, जिनको लघिमा सिद्धि थी, लघिमा सिद्धि की वजह से वो पानी के ऊपर भी चल सकते थे। तो ये 4 शिष्य उनके बन गए, चारों के ऐसे विचित्र और अद्भुत सिद्धियां योग अभ्यास की वजह से। लेकिन उनको समझ में आया कि हमारा योग अभ्यास तो ये बहुत सस्ती चीज है, कुछ भी नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं शुद्ध भक्ति के सामने। इसलिए जब उन्होंने देखा कि तिरुमंगई ये कितने महान विष्णु भक्त हैं, तो चारों के 4 जो हैं वो तिरुमंगई के शरण में आ गए, उनके शिष्य बन गए। और उनके साथ में भ्रमण करते करते तिरुमंगई अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए, भगवान का भजन कीर्तन करते करते गए, और आखिर फिर से दक्षिण भारत में आए। और धीरे धीरे से श्रीरंगम क्षेत्र में आए, जहां की रंगनाथ देव की मूर्ति थी, छोटा सा मंदिर था वहां पे, हालांकि मूर्ति तो बहुत बड़ी है। वहां पे उनको दुख हुआ यह देखकर कि केवल जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा है, और उस जंगल में बहुत सारे खतरनाक पशु हैं और मंदिर में सेवा भगवान की ठीक से नहीं हो रही है। केवल दिन में एक बार एक पुजारी आया करता था और वो थोड़ा सा जल और थोड़े से फूल रंगनाथ जी को अर्पण करता था, और वो भी जल्दी जल्दी में, क्योंकि उसको डर रहता था कि कोई इतने जंगली पशु आकर मुझे खा नहीं जाए, इतनी खराब परिस्थिति थी। तो पुजारी जल्दी से आकर फूल पानी पानी अर्पण करके भाग जाता था वहां से। तो फिर तिरुमंगाई उनके शिष्यों के साथ में जब वहां पर पहुंचे तो उनको बहुत दुख हुआ कि अरे भगवान रंगनाथ के लिए कोई मंदिर नहीं, कोई अच्छा स्थान नहीं, तो हमें बहुत एक बढ़िया भव्य मंदिर रंगनाथ जी के लिए बनाना चाहिए। तो मंदिर बनाए कैसे? तिरुमंगई तो भ्रमण करने वाले सन्यासी थे, उनके पास कहां से पैसा आता, और उनके जो चार शिष्य थे वो भी प्राय सन्यासी के तरह थे, वो भी उनके साथ इधर उधर घूमते थे, तो वो भी पैसे कहां से लाएं, तो क्या किया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि वहां उस प्रांत में जितने भी सारे धनी लोग हैं, जो व्यापारी हैं इत्यादि, जमींदार हैं, राजा हैं, उनके पास जाकर वो भिक्षा मांगे, दान मांगे रंगनाथ जी के लिए एक भव्य मंदिर बांधने के लिए। लेकिन हालांकि 1000 साल पहले की बात है आज से, लेकिन फिर भी कलयुग तो आ ही गया था, और आपको मालूम है कि कलयुग में लोगों की भक्ति भावना बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम लोग रुचि लगते हैं भक्ति में। तो वहां जितने भी धनी लोगों के पास तिरुमंगई और उनके शिष्य गए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कोई भी दान देने के लिए, और यहां तक कि तिरुमंगई और उनके शिष्यों को उनके बारे में उनको अपमानित करते, उनको चोर कहते, नाना तरह से उनका निरादर करते। तिरुमंगई अपने लिए तो दुखी नहीं थे कि ठीक है मेरा खुद का अपमान हो गया, कोई बात नहीं, भक्त के गुण ऐसे होते हैं कि खुद का अपमान जब होता है तो सहन कर लेता है, उसे तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर भगवान की सेवा में कोई अड़चन आ जाती है, कोई तकलीफ आती है, तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो फिर तिरुमंगई बड़े हैरान हो गए कि इतने सारा पैसा इन लोगों के पास है, एक कौड़ी पैसा देने के लिए तैयार नहीं भगवान की सेवा के लिए, सब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, भोग के लिए रख रहे हैं। तो फिर एक दिन उनसे रहा नहीं गया, तो अपने शिष्यों के सामने उन्होंने कहा कि आपकी क्या इच्छा है, हम इन सारे राजा महाराजाओं की व्यापारियों की सेवा करते रहें, इनके सामने सर झुकाते रहें और रंगनाथ जी ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे जंगल में, या तो फिर हम रंगनाथ जी के लिए ऐसे भव्य मंदिर बनाएं, ऐसे शानदार उनकी सेवा की व्यवस्था करें कि सारे जो घमंडी लोग हैं वो इस भव्य मंदिर में आके अपना सर झुकाएंगे, उनका घमंड चूर हो जाएगा, रंगनाथ जी के सामने वो दंडवत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो बोलिए आपको क्या चाहिए? तो शिष्यों ने कहा हम तो भगवान के दास हैं, ये सब घमंडी अमीर लोगों के दास हम नहीं है। तो फिर तिरुमंगई ने कहा तो बहुत अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, इन धनी लोगों के धन से ही हम ये मंदिर बनाएंगे। ये धनी लोग केवल गरीबों को कखून चूसकर, उनसे पैसा छीनकर वो धनी बने हैं, और जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं वो बेचारे इतने गरीब हैं कि उनको भोजन भी नहीं है खाने के लिए। तो उनसे इन धनी लोगों से धन चोरी करके हम ये मंदिर बनाएंगे, रंगनाथ जी की शानदार सेवा करेंगे और गरीबों को भी प्रसाद खिलाएंगे, किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मंजूर? तो उनके शिष्यों ने कहा मंजूर, हम करेंगे। तो फिर उनको जो पहले शिष्य थे तोला वजक्कन, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे करूंगा कि मैं अमीर लोगों के पास जाऊंगा जो कि उनके सहायकों के साथ पर रहेंगे, उनको वाद विवाद में मैं अटका दूंगा और वो हट नहीं पाएंगे मेरे से, मेरे पास में बैठेंगे तब तक आप अंदर से जाके उनका धन चोरी कर सकते हैं। फिर उनके दूसरे शिष्य तलुडुवन, उन्होंने कहा ऐसी कोई तिजोरी नहीं है जो मेरे हाथ से मैं वो खोल नहीं सकता, तो मैं आप जब तक दूसरा काम करते हैं मैं सब तिजोरी ताला वाला तोड़ के सब खाली करके सब ले आऊंगा, ये मेरी सेवा रहेगी रंगनाथ जी के लिए। वे तीसरे शिष्य थे निजलय मिथिप्पन। उन्होंने कहा कि देखो, जब धनी लोग इधर उधर जा रहे होते हैं घोड़े पर बैठकर या कहीं पर, तो मैं क्या करूंगा, जाके उनके छाया के ऊपर मेरा पैर रख दूंगा तो अटक जाएंगे, आगे नहीं हट पाएंगे। तो जब इस तरह से वो अस्थिर हो जाते, वो बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, हिल नहीं सकते, तो फिर आप तीनों धन उनका चोरी कर सकते हैं। फिर चौथे शिष्य निर्मल नदप्पन, उन्होंने कहा कि चोरों के डर से कई ऐसे ये राजा जमींदार धनी लोग हैं जिन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द पानी रखा है, ताकि पानी इतना गहरा है, चौड़ा है कि कोई वहां पर जा नहीं सकता, तो मैं पानी के ऊपर चल के आराम से उनके घर में जाके चोरी करके आऊंगा, मैं ताला वाला खोल दूंगा, सब आप अंदर आके चोरी कर सकते हैं। तो फिर ये योजना बन गई और तिरुमंगल भी बड़े खुश हुए कि ठीक है। फिर उन्होंने चोरी करना आरंभ किया और बहुत ही जल्दी उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में चोर आ गए, डाकू। ये अन्य जो डाकू थे, ये भक्त नहीं थे, वो तो केवल चोर डाकू थे, केवल तिरुमंगल और अपने जो चार शिष्य थे, उनके चार शिष्य थे, यही भक्त थे, ये पांच। बाकी जितने भी चोर डाकू आए वो सब केवल चोर डाकू ही थे। लेकिन देखिए, भगवान के भक्त कितने निपुण होते हैं, सबको सेवा में लगाते हैं, तो इन चोर डाकुओं को भी उन्होंने सेवा में लगा दिया। तो हजार हजार ऐसे चोर डाकू आए उनके साथ में और जगह जगह जाके डाका मारते और ऐसे चोरी करते, और बहुत जल्दी बहुत सारा धन एकत्र हो गया, जो कि वहां पे कावेरी नदी में ऊपर जो द्वीप है जिसके ऊपर रंगनाथ जी स्थित थे, तो वहां पे वो छुपाने लगे। आपको याद होगा रंगनाथ जी की मूर्ति कौन लाए थे वहां पर? विभीषण। विभीषण वहां लाकर छोड़ गए थे, पूजा हो रही थी, लेकिन वो तो त्रेता युग की बात थी, इतने हजारों लाखों साल बीत चुके थे, तब तक तो कोई मंदिर भी नहीं रहा था वहां पर। तो वहां मंदिर के जो रंगनाथ जी के पास में कहीं एक सुरक्षित स्थान में वो लाके धन को छुपा देते, और जैसे जैसे धन आ गया, काफी हो गया, तो फिर तिरुमंगई ने जगह जगह से जो बड़े प्रसिद्ध शिल्पकार थे, शिल्प शास्त्र में जो निपुण व्यक्ति थे, स्थापति इत्यादि, उनको बुलवाया और कहा कि आप एक बढ़िया भव्य सुंदर मंदिर रंगनाथ जी के लिए यहां पर खड़ा कर देना। और फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, और जैसे काम शुरू किया तो उधर से जो भी राजा थे वो भी जान गए कि ये तिरुमंगई जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महान भक्त है। तो उन्होंने खुद आकर तिरुमंगई को और ज्यादा धन देना शुरू कर दिया। उधर जो अमीर जमींदार थे, व्यापारी थे, उन्होंने भी पैसा देना शुरू किया, लेकिन डर की वजह से, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हम खुद नहीं देंगे तो डाका माल के लेने ही वाले हैं, इनके पास इतने सारे चोर हैं, तो इससे अच्छा ये है कि हम जाके उनको पैसा दे ही देते हैं। इस तरह से रंगनाथ जी का खजाना बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बहुत धन हो गया। और फिर मंदिर का काम बनाने का काम शुरू हो गया, और सबसे पहले तो रंगनाथ जी के ऊपर जो गर्भगृह है वो बन गया, फिर मंदिर बन गया, और मंदिर के इर्द गिर्द एक दीवार थी, और दीवार में थोड़े निवास स्थान भी थे पुजारियों के। तो ये सब बनाने के लिए पूरे 2 साल निकल गए। उसके बाद में जो और एक दूसरा दीवार था, इस पहले दीवार के बाद में दूसरा दीवार, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं एकादशी के दिन कि रंगनाथ मंदिर के कितने दीवारें हैं? 7। तो अभी पहला बन गया था अंदर का मंदिर और पहला दीवार, कितने साल लग गए? 2 साल। फिर दूसरा दीवार, उसको लग गए 4 साल। तीसरा दीवार, उसको लग गए 6 साल, क्योंकि केवल दीवार ही नहीं, वहां रहने के लिए स्थान, अलग अलग उनके जो दफ्तर वगैरह और कितने काम के लिए, जो भी व्यवस्थापन के लिए वहां कमरे वगैरह आवश्यक थे वो सब बनाए। और जैसे जैसे बाहर होता गया, दीवार तो बड़ा होता गया, इसलिए ज्यादा समय लग गया। फिर चौथा दीवार 8 साल, पांचवा दीवार 10 साल, छठा दीवार 12 साल, और सातवा सबसे बाहर वाला दीवार, उसको बनाते बनाते 18 साल बीत गए। तो कुल मिलाकर जब से मंदिर को बांधने का काम शुरू हुआ था और तब जब तक कि बाहर सातवां दीवार समाप्त नहीं हुआ, पूरे 60 साल गुजर गए थे। और उस समय तिरुमंगाई की आयु 80 से भी ज्यादा थी, काफी बूढ़े हो गए थे। और जब मंदिर समाप्त हो गया तो फिर तिरुमंगाई ने सारे शिल्पकारों को, स्थापतियों को बड़े अच्छे ढंग से उनको धन दे दिया, उनकी फीस, और उनको धन देकर स्थापतियों को वापस भेज दिया। लेकिन अभी उनके खजाने में, भंडार में एक भी पैसा नहीं था, सब खत्म हो गया था। तिरुमंगाई को क्या पैसा चाहिए था? हालांकि इतना धन अभी आ गया था, लेकिन तिरुमंगाई फिर भी जैसे पहले रहा करते थे वैसे ही रहते थे। दिन में एक बार खाते थे, अपने हाथों से भोजन बनाया करते थे, बिल्कुल साधारण जीवन। ये भी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, हमारा नियम होना चाहिए। भगवान के लिए सब प्रकार के ऐश्वर्य, जितना हम दें उनको उतना कम है, लेकिन हमारे लिए गरीबी, भगवान के लिए ऐश्वर्य, हमारे लिए साधारण जीवन, ये होना चाहिए। इसलिए भगवान का भक्त जो होता है वो पैसे से कभी नहीं डरता है, वो ये नहीं सोचता पैसे को छूऊंगा तो मैं माया में पड़ जाऊंगा। हाँ, डर तो रहता है, अगर कोई परिपक्व नहीं है तो पैसे का गलत उपयोग कर सकता है। हाथ में पैसे आए तो कोई ऐसे काम कर सकता है जो कि भक्त को नहीं करना चाहिए। परंतु अगर कोई भक्त पक्का है तो विचलित नहीं होगा धन से, क्योंकि वो जानता है कि धन ये तो लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी की का उपयोग तो नारायण की सेवा में करना चाहिए। इसलिए जितना भी धन आए वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, लेकिन खुद बड़े सरल जीवन रहते हैं वो। तो तिरुमंगल भी ऐसे ही रहा करते थे, तो उनको क्या पैसे की जरूरत थी, सारे पैसे खत्म हो गए। तो तिरुमंगाई और उनके चार शिष्य वो तो संतुष्ट थे। क्यों संतुष्ट थे? उनका उद्देश्य था कि रंगनाथ जी के लिए सुंदर मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बन गया, अब और क्या चाहिए था उनको? रंगनाथ जी की सेवा आरंभ हो गई थी। आज भी जो मंदिर है श्री रंगम में रंगनाथ जी का, वो तिरुमंगाई नहीं बनाया था, यही मंदिर है, वही पुराना मंदिर, 1000 साल पुराना मंदिर। लेकिन वो जो 1000 चोर डाकू उनके साथ में थे वो बड़े असंतुष्ट थे। उन्होंने सोचा, अरे हमने इतने साल चोरी वोरी किया, एक हमको कुछ पैसा नहीं, केवल स्थापतियों को पैसा दे दिया उन्होंने, हमारे लिए क्या? तो जब वो आए तिरुमंगाई के पास, तिरुमंगाई के पास कुछ पैसा नहीं। फिर ये चोर डाकू ने सोचा कि अभी तिरुमंगाई को खत्म करना चाहिए, तो उन्होंने एक योजना बनाई, षड्यंत्र बनाया कि आज हम ऐसे ऐसे जगह में इस तरह से तिरुमंगाई इनकी हत्या करेंगे। जब खबर पहुंची तिरुमंगाई को उनके शिष्यों के माध्यम से, तो तिरुमंगाई ने अपने चौथे शिष्य निर्मल नदप्पन के साथ एकांत स्थान में चर्चा किया कि क्या किया जा सकता है। फिर निर्मल मदप्पन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं मामला निपटा लूंगा। फिर वो चारों वो चोरों के पास गए और कहने लगे कि मुझे एक रहस्य मालूम है, हमारे गुरु महाराज ने कावेरी नदी के उत्तरी भाग में एक जगह में बहुत सारा धन छुपा के रखा है, मैं तुम्हें, तुम सबको वहां ले चलता हूं और वहां से हम ये धन निकालेंगे, आपस में बांट लेंगे, सब धनी हो जाएंगे। तो सारे चोरों ने कहा, चलो 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 जल्दी चलो। फिर वह एक बड़े से नौके में बैठ गए, जिस नौके में मंदिर को बांधने के लिए जो पत्थर वगैरह लगा करते थे वो आते थे लाया, उनमें लाया जाता था। तो सारे ये चोर उस बड़े नौके में बैठे और कावेरी नदी में चल पड़े। बरसात का मौसम था, पानी काफी भर गया था नदी में, नदी की चौड़ाई 1 मील की थी, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नदी, 1 मील की चौड़ाई। और फिर अचानक जैसे ही नौका अंदर चला गया पानी में, तो वहां मूसलाधार वर्षा होने लगी, काले काले बादल आ गए, और वैसे भी सूर्यास्त हो गया था, होने जा रहा था, और फिर अचानक तेज हवा, बिजली, बादलों की गड़गड़ाहट, बहुत भयानक परिस्थिति हो गई। और जैसे जैसे नौका आगे चलता गया, उधर तट पर तिरुमंगाई अपने 3 शिष्यों के साथ खड़े रहकर देख रहे थे। और जब आगे 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 धुंध में वो चला गया नौका, अचानक उनको भयंकर आवाजें सुनाई दी, चीख रहे थे, और फिर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे से नौका अंदर गया, डूब गया, क्योंकि इतना पवन, इतने लहरें, इतनी बारिश, वो नौका वहां टिक नहीं पाया, और वैसे भी 1000 लोग बैठे थे उसमें, कितना भारी वजन हो गया होगा। और फिर उन्होंने देखा कि वहां से धुंध में से एक व्यक्ति पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं। कौन थे वो? वो चौथे शिष्य निर्मल नदप्पन, वो आए। इसका मतलब क्या हो गया? ये सारे 1000 चोर कावेरी नदी में डूब गए। और फिर तिरुमंगाई ने आलिंगन किया उनके शिष्य को और कहा कि चिंता नहीं करो कि ये लोग मर गए, वैसे भी देखो अभी उनको, उनकी सेवा जो की है उन्होंने रंगनाथ के लिए, रंगनाथ जी कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए उनको अपने धाम में ले जाएंगे, इसलिए उनको अभी प्राण त्यागना अच्छा है। अगर अभी प्राण नहीं त्यागते तो और पाप करते, चोरी करते। अभी जो उन्होंने चोरी की है वो तो रंगनाथ जी के लिए की है, इसलिए रंगनाथ उनका बेड़ा पार कर देंगे, लेकिन इसके बाद जो चोरी करेंगे वो भगवान के लिए नहीं करेंगे, इसलिए उनको बहुत बुरी गति मिलेगी। इसलिए अभी उन्होंने प्राण त्याग दिया, ठीक है, यही अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं करो। तो इस तरह से तिरुमंगई अपने चार शिष्यों के साथ में वहां पर रहे श्रीरंगम में, और बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से, वो अपने हृदय से रंगनाथ जी की सेवा करने लगे। अपने जीवन के अंत तक पांचों के पांच वहीं पर रह गए, और उनके जीवन, उनका प्राण वहीं पर उन्होंने त्याग दिया रंगनाथ जी के शरण में। अभी ये सुंदर कहानी सुनने के लिए तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका नकल हम नहीं कर सकते। कई बार भक्त लोग ये गलती करते हैं, हम तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे नहीं, हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। हम अगर हमें ऐसा करना है तो हमें तिरुमंगल जैसे भक्त बनना चाहिए, जो इतने पूरे शुद्ध भक्त थे, और बन भी जाएं फिर भी हमें नहीं करना है। इनके और भगवान के बीच में लीला अलग थी, वो ऐसा कुछ कर सकते थे, और उन्होंने कर दिखाया, अद्भुत शक्ति कर दिखाई। उनको वैसे भी शिष्य मिल गए चार। तो इस तरह से देखिए ये सुंदर भव्य मंदिर जो श्रीरंग में अब है, इसका इतिहास कैसा है। अच्छा लगा ये इतिहास? लेकिन कोई नकल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मंदिर में गड़बड़ हो जाएगी सब। तो इस तरह से तिरुमंगई के सेवा से ये भव्य मंदिर वहां पर बन गया। तो उधर रामानुजाचार्य रह रहे थे। कई साल ऐसे बीत गए, 300 साल कई पुजारी वहां आए, कई पीढ़ियां वहां से बीत गईं, और वहां पे जो मुख्य पुजारी थे, हेड पुजारी, वो अच्छे भक्त नहीं थे, वैसे हृदय से बड़े दुष्ट थे, केवल अपने पद का गैर फायदा उठाकर, दुरुपयोग करके उन्होंने काफी धन अपने लिए चोरी करके रख दिया था, खुद बहुत धनी बन गए थे, तो भगवान का पैसा भी चोरी कर लिया था उन्होंने। ये बहुत बड़ा पाप होता है, पैसा चोरी करना तो पाप है, लेकिन भगवान का पैसा, वो भी मंदिर से कुछ चोरी करना, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा पाप है। तो वो हेड पुजारी थे, प्रमुख पुजारी थे वहां के पुरोहित, वो ऐसे थे, बड़े आराम से रहते, बड़े घमंडी भी थे, और जब उन्होंने देखा कि रामानुजाचार्य अब इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं, सभी लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके शरण में आए हैं, दिन रात उनके पीछे इतने लोग आते जाते हैं, उनको नमस्कार करते, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो उनको लगा, ये पुजारी को लगा कि अब ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए तो खतरा ही है। अब रामानुजाचार्य इतना बड़ा बन गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं इतने यहां का मुख्य पुजारी हूं तो मेरे लिए मेरी ओर कोई देखेगा भी नहीं, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। तो फिर उसके हृदय में ये जलन थी कि किसी न किसी तरह से ये रामानुज को मेरे रास्ते से हटाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे रास्ते में कांटा बन गया है। तो फिर एक दिन वो अपने घर में आए, अपने पत्नी से बोलने लगे कि मैं रामानुज को हमारे घर में भिक्षा के लिए बुलाऊंगा, और देखो मैं थोड़ा विष भी लाया हूं, ये लो, अभी आगे जो करना है तुम समझ गई ना। तो पत्नी भी पति की तरह ही थी, वो भी कहने लगे समझ गई, करेंगे हम, कोई चिंता नहीं। तो फिर जाकर उस पुजारी ने रामानुज को निमंत्रण किया कि आप मेरे घर में आइए, भिक्षा स्वीकार कीजिए। तो रामानुजाचार्य निष्पाप थे, उनको क्या मालूम है इनके मन में क्या चल रहा है। तो आए अगले दिन 12 बजे ठीक, और उस समय पुजारी की जो पत्नी थी, दोनों काफी वृद्ध थे, तो पत्नी ने स्वागत किया, उनके चरण धोए और बिठाया उनको प्रसाद के लिए, और फिर वो पात्र लाया जिसमें वो भोजन था जिसके अंदर काफी विष मिलाया हुआ था। लेकिन जब पुजारी की पत्नी ने रामानुजाचार्य का चेहरा देखा, जो कि इतना तेजस्वी था, प्रकाशमान था, इतनी भक्ति थी उनके चेहरे के ऊपर, इतने मासूम लगते थे, निष्पाप लग रहे थे, कि उनका हृदय पिघल गया। फिर ऐन वक्त पर पुजारी की पत्नी ने रामानुज से कहा, देखो बेटा, ये मत खाना, तुम्हें भूख लगी है तो कहीं और जाके खाना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हालांकि खुद उस वो महिला ने विष डाला था। तो रामानुज ने पूछा, क्यों, क्या बात है? फिर पुजारी की पत्नी ने बताया, रामानुजाचार्य को हृदय में बहुत बड़ा धक्का पड़ गया कि अरे, विश्वास नहीं हो पाया कि पुजारी ने मेरे साथ ऐसा किया। उनका सर चकरा गया और तुरंत वहां से उठे और सीधे अपने सर पे हाथ रखकर कावेरी के तट पे गए कि क्या यह मंदिर के पुजारी ऐसा कर रहे हैं। तो जो रामानुजाचार्य के मन में दुख था, वो ये नहीं था कि मेरी जान खतरे में है, ये दुख नहीं था। दुख ये था कि मैंने कुछ ऐसे कोई गलत काम किया है क्या, जिसकी वजह से पुजारी के मन में मेरे प्रति ऐसी भावना है कि वो मुझे विष खिलाने के लिए तैयार हो जाए। तो मैंने क्या गलती की है, ये इस एक बार में दुख था रामानुजाचार्य को। और दूसरा दुख जो था उनके मन में, वो ये था कि अगर ये पुजारी मेरी हत्या करेगा या ऐसे कोशिश भी करता है, तो ये बड़ा पाप होगा उससे। किसी की हत्या करना और एक वैष्णव की भी हत्या करना, ये तो बड़ा पाप होता है। तो फिर उसकी क्या गति होगी, वो तो नरक में जाएगा। तो किस तरह से इसकी वृत्ति को, उसके मनोवृत्ति को सुधारना चाहिए, ये दुख था। और जैसे वो कावेरी नदी के तट पर गए, तो वहां पर गोष्ठीपूर्ण उनको दिखाई पड़े। तो गोष्ठीपूर्ण के पास दौड़ के गए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गोष्ठीपूर्ण ने उनको उठाया, पूछा कि अरे रामानुज, बात क्या है, क्यों इतने दुखी लग रहे हो? तो फिर रामानुज ने सारी कहानी बता दी और कहा कि मेरा दुख केवल ये है कि इस व्यक्ति का क्या होगा, इतना पाप से भरा, इतना द्वेष से उसका हृदय भरा है कि क्या किया जाए, कैसे उसको इस द्वेष से, पाप से मुक्त किया जा सके। तो गोष्ठीपूर्ण ने कहा कि अरे रामानुज, कोई चिंता की बात नहीं है, जब तुम्हारे जैसा भक्त किसी भी दूसरे व्यक्ति का भला चाहता है और वो चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति द्वेष से, घमंड से मुक्त हो जाए, तो भगवान विष्णु तो ऐसे करके ही रहेंगे। इसलिए चिंता नहीं करो, ये जो पुजारी है, ये भी बहुत आगे चल के अपने घमंड से मुक्त हो जाएगा और ये भी महान भक्त बन जाएगा, तुम्हारे शरण में आएगा। फिर रामानुज फिर से अपने आश्रम में लौटकर चले गए। वहां पर एक ब्राह्मण आए थे जिन्होंने बहुत सारा प्रसाद लाया था। थोड़ा बहुत प्रसाद रामानुज ने ग्रहण किया, बाकी शिष्यों में बांट दिया। अपने आश्रम में उन्होंने किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ था, चुप रहे उसके बारे में। और फिर जब पुजारी अपने घर में लौट के गए, तो वो आशा कर रहे थे कि आज रामानुज खत्म हो जाएंगे। लेकिन घर में आकर जब पत्नी ने बताया कि ऐसे हुआ है, उनको गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन फिर क्षमा कर दिया पत्नी को कि ठीक है, महिला है, महिलाओं का हृदय थोड़ा ज्यादा कोमल रहता है, तो करुणा की भावना आ गई, उसने नहीं किया तो ठीक है, मैं खुद अभी कुछ करने वाला हूं। तो अगले दिन उन्होंने क्या किया कि जो चरणामृत होता है भगवान का, उसमें इतना विष भर दिया जो कि 10 आदमियों को खत्म करने के लिए काफी था। वो जानते थे कि हर रोज शाम को रामानुजाचार्य रंगनाथ देव का दर्शन करने आते थे, तो उस समय पुजारी वहां खड़े हो गए चरणामृत के सामने। और फिर जैसे रामानुजाचार्य ने दर्शन किया, चरणामृत लेने आए, तो पुजारी ने उनको चरणामृत दिया भर के। और फिर रामानुजाचार्य को पता था कि इसमें विष भरा है, लेकिन ये चरणामृत है, इसलिए उन्होंने पान कर दिया चरणामृत का। और उस समय रंगनाथ देव का गुणगान करने लगे कि हे करुणा सिंधु रंगनाथ देव, आपकी असीम कृपा है कि मेरे जैसे एक तुच्छ जीव को भी आपने अपने चरणों का अमृत दिया है। यह केवल आपकी अहित की और अचिंत कृपा है, मेरे ऊपर हमेशा ऐसे कृपा बनाए रखिए। और ऐसे उन्होंने प्रार्थना की और भक्ति से भाव भोर हो गए और उनका शरीर जो है प्रेमावेश में कांपने लगा, रोमांच खड़े हो गए। तो ये लक्षण जब रामानुज के शरीर में देखा पुजारी ने, पुजारी सोचने लगा हां अभी विष काम कर रहा है। और फिर रामानुज वहां से चले गए तो पुजारी रात भर प्रतीक्षा करते रहे कब सुबह होगी और मैं देखूंगा कि रामानुजाचार के अंतिम क्रिया करने के लिए सभी लोग स्मशान में गए हैं। वो उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कल मैं सुबह उठकर धुआं देखूंगा स्मशान में। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो धुआं तो कुछ नहीं देखा, लेकिन सुना कि बहुत सारे लोग कुछ गीत गा रहे हैं, कोई श्लोक बोल रहे हैं। तो कहां से ये आवाज आ रही है? चलते चलते वहां गए तो देखा कि वहां रामानुजाचार्य छोटे से आसन के ऊपर बैठे थे और इतने सारे लोग उनके इर्द गिर्द बैठे थे, उनका गुणगान कर रहे थे। कोई नमस्कार कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई उनका गुणगान कर रहा है, कोई गीत गा रहा है। और रामानुजाचार्य वहां अकेले बैठे, उनकी आंख बंद है, भगवान की भक्ति के, भगवान के स्मरण में उनका चित्त मग्न था, उनको बाहरी चेतना नहीं थी और उनका चेहरा इतना प्रकाशमान और सुंदर लग रहा था, भक्ति से भरा हुआ। जब ये पुजारी ने ये देखा तो तुरंत उनका हृदय पिघल गया और फिर उनको बहुत तीव्र पश्चाताप हुआ कि अरे रे रे, मैं कितना मूर्ख हूं, कितना पापी पतित व्यक्ति हूं, मैंने रामानुजाचार्य सर जैसे शुद्ध भक्त के प्रति कितना मैंने बड़ा पाप किया। तो बहुत भीड़ थी तो भीड़ के बीच में से लोगों को हिलाते हिलाते वो ठीक से अंदर गए और वहां जाकर रामानुजाचार्य के सामने दंडवत प्रणाम किया और जोर जोर से अपना सर जमीन पर पीटने लगे कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना दुष्ट हूं कि मैंने इतना नीच काम किया है। और सब जगह खून बहने लगा। वहां जो लोग खड़े थे उन्होंने उनको रोक लिया, लेकिन फिर भी वो अपने छाती को पीटने लगे और सब जगह उनके शरीर पे खून ही खून था। तब तक रामानुजाचार्य बाहरी चेतना में आ गए और फिर उन्होंने कहा कि अरे रे रे, ये सब क्या कर रहे हो आप, ये सब ठीक नहीं आपके लिए। फिर पुजारी कहने लगा कि मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, मैंने आपके प्रति बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत अन्याय किया है, इसलिए मैं नहीं सोचता कि मेरे लिए कोई आशा है। तो भगवान ने कहा, जो रामानुजाचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति अपने किए हुए बुरे कामों के प्रति बहुत पश्चाताप की भावना रखता है, भगवान ऐसे व्यक्ति को जल्दी से क्षमा कर देते हैं, तो चिंता नहीं करो। और फिर वो पुजारी रामानुजाचार्य के शरण में रहे, उनकी सेवा करने लगे, बल्कि उनके शिष्य भी बन गए और आगे चल के वो भी एक बहुत अच्छे विष्णु भक्त बन गए। तो ऐसी अद्भुत घटनाएं श्री रंगम में होती रहती थी। एक बार ऐसे हुआ कि एक बड़े विद्वान थे, वो मायावादी थे। मायावादी तो सब लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है, अद्वैतवादी, जो भगवान के नित्य रूप के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, जो सोचते हैं कि केवल भगवान निराकार है, वो भगवान के निराकार में लीन होना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। उनका नाम था यज्ञमूर्ति। हालांकि वो दक्षिण भारत के थे, लेकिन इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने सोचा कि मैं भारत भर में भ्रमण करूंगा और जितने भी बड़े विद्वान हैं उनको चैलेंज करूंगा, चुनौती रखूंगा उनके सामने कि मेरे सामने वाद विवाद में तुम खड़े हो जाओ। और सबको हरा देते थे वाद में, और सबसे उन्होंने अपना दस्तखत लिया था कि मैं हार गया हूं यज्ञमूर्ति के सामने, कोई उनका सामना नहीं कर सकता था, इतने बड़े पंडित थे वो। और जब भी जाते तो उनके उनके साथ में एक गाड़ी रहती थी, रथ, उस रथ में भर के उनके सारे ग्रंथ वगैरह हुआ करते थे। तो उन्होंने सुना जब वो दक्षिण भारत में आए कि रामानुजाचार्य नाम का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है जो कि श्रीरंगम में रहता है, को मुझे हराना है अभी तक। तो सीधा श्रीरंगम में आए, श्रीरंगम में आकर सीधे रामानुजाचार्य के पास गए। मैं आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ आप बात करो। तो रामानुजाचार्य वैष्णव होने के नाते सोचने लगे, क्यों समय बर्बाद करना है ऐसे एक मायावादी व्यक्ति के साथ, केवल तर्क वितर्क में समय क्यों बर्बाद करना है। और स्वभाव से वैष्णव नम्र भी रहते हैं। तो रामानुजाचार्य ने यज्ञ मूर्ति से कहा, आप तो बड़े महान पंडित हैं, विद्वान हैं, आपका सामना भला कौन कर सकता है, और मैं तो एक क्षुद्र जीव हूं, अज्ञानी हूं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, तो आप तो विजयी हो ही गए, तो वाद करने की क्या जरूरत है। तो बात अगर वहां तक समाप्त हो जाती तो और बात हो जाती, लेकिन यज्ञ मूर्ति वहां रुके नहीं, बोलने लगे कि अगर वास्तव में मेरा विजय हुआ है तो फिर आप ये जो गलत वैष्णव सिद्धांत है इसको त्याग दो, ये सब गलत चीज है, और जो अद्वैतवाद है, मायावाद है, ये इसका सत्य जो परम सत्य है इसको तुम स्वीकार करो। तो फिर रामानुजाचार्य चुप कैसे बैठते, वो कहने लगे कि आप तो आपका ही सिद्धांत ऐसे है, मायावादी सिद्धांत, कि जो भी मन से उत्पन्न होता है वो सब माया है, तो आपने जो निकाले हुए सिद्धांत है वो भी तो माया है, वो भी तो झूठ है, फिर आप इस झूठ को त्याग दीजिए। फिर यज्ञ मूर्ति कहने लगे कि ये संसार में, जगत में जो भी कुछ है वो सब मिथ्या है, सब झूठ है। आप लोग कहते हो कि भगवान का रूप सत्य है, लेकिन रूप मतलब असत्य, रूप मतलब मिथ्या, रूप का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। और इस तरह से वाद शुरू हो गया दोनों के बीच में। 17 दिन लगातार यह वाद चलता रहा, सुबह से शाम तक। 17 दिन बीतने के बाद भी रामानुजाचार्य यज्ञ मूर्ति को हरा नहीं पाए। 17 दिन समाप्त होने के बाद बड़े उदास होकर रामानुजाचार्य अपने आश्रम में लौट गए। यज्ञ मूर्ति इतनी चतुराई से तर्क कर रहे थे, वाद कर रहे थे, कि जो भी कुछ रामानुजाचार्य कहते उसका उत्तर उनके पास कुछ ना कुछ रहता था। ऐसे 17 दिन होने के बाद भी जब ऐसे लग रहा था कि रामानुजाचार्य भी हरा नहीं पाएंगे उनको, तो शाम को जब रामानुजाचार्य अपने आश्रम में, आश्रम के जो विग्रह हैं, मूर्ति हैं, श्री देवराज, भगवान विष्णु की ही मूर्ति है, देवराज देवताओं के राजा, तो उनके पास गए, हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे प्रभु, आपके ही शास्त्रों में तो आपके सुंदर रूप का वर्णन है, भक्ति की महिमा का वर्णन है, लेकिन ये जो मायावादी लोग हैं इतने चतुराई से जो इस सच्चे सिद्धांत को ढक लेते हैं जैसे बरसात के घने बादल, तो किस तरह से ये भक्ति के सिद्धांत का प्रचार होगा, कैसे भगवान के भक्त सब जगह हो जाएंगे। और फिर रामानुज वहां पर रोने लगे भगवान के सामने। तो फिर उस रात को उनके सपने में भगवान आए और कहने लगे कि अरे रामानुज, चिंता नहीं करो, तुम्हारे माध्यम से ही विश्व भर में भक्ति का प्रचार होगा, और भक्ति ही श्रेष्ठ है यह सिद्ध हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, हौसला बनाए रखो। फिर जब सुबह को रामानुज उठे, तुरंत उनको वो सपना याद आया और एकदम जोश आ गया उनको, उनका चेहरा खिल उठा। फिर अपने प्रातः काल के जो भी क्रियाएं थीं वो उन्होंने कर लिए और फिर रवाना हुए उस आश्रम के लिए जहां पर यज्ञ मूर्ति रहा करते थे, वाद को आगे बढ़ाने के लिए। 18वें दिन जब यज्ञ मूर्ति ने रामानुज को प्रवेश करते हुए देखा, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? वो सोचने लगे कि कल शाम को जब ये रामानुज यहां से चले गए तो बस हारने ही वाले थे, इस पॉइंट पर थे, इस स्थिति में थे, और उदास होकर चले गए थे, लेकिन आज जब यहां पर सुबह को ये रामानुज आ रहे हैं, इनका चेहरा तो देखो एक देव की तरह, देवता की तरह दिख रहा है। ऐसा चमक, ऐसा तेज, ऐसी दिव्य भक्ति इनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे लगता है कि उनको कोई विशेष दिव्य प्रेरणा मिली है और वो विजय होने ही वाले हैं। और मुझे लगता है कि आज से मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। तो इससे अच्छा यही है कि मैं ये वाद विवाद का झंझट बंद कर दूं। मेरे अंदर जो दोष है घमंड का, उसको मुझे सुधारना है। और इसके लिए एक ही तरीका है कि मैं रामानुज के शरण में जाऊं और उनका शिष्य बनूं, तब सब ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही रामानुज वहां पर आए तो यज्ञ मूर्ति ने जाकर सीधा साष्टांग प्रणाम किया उनको और प्रार्थना कृपा याचना की कि मैं अब जानता हूं कि आप कितने महान भक्त हैं। आपकी वजह से ही मुझे अब पता चल गया है कि मेरे अंदर कितने दोष थे, तो कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर दीजिए। तो रामानुजाचार्य, उनको अच्छा नहीं लगा कि इतने वृद्ध वरिष्ठ एक पंडित उनके उनको दंडवत कर रहे हैं, उनका उनके चरण पकड़ रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अरे पंडित जी, आपको शोभा नहीं देता इस तरह से मेरे चरण में, मेरे पैरों में रहना, उठिए उठिए। तो फिर उस समय यज्ञ मूर्ति ने कहा, नहीं, अभी मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं आपके शरण में ही रहना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, मैं भी कृष्ण का भक्त होना चाहता हूं। और इस तरह से यज्ञ मूर्ति कहने लगा कि मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं आपके शरण में आया हूं। उस समय रामानुजाचार्य कहने लगे कि सौभाग्य तो तुम्हारा यह है कि भगवान देवराज की कृपा से तुम्हारा घमंड का चूर चूर हो गया है। जो व्यक्ति बड़ा विद्वान रहता है, उसको विद्या का ऐश्वर्य रहता है, उसको घमंड हो जाता है, और ऐसे घमंड को त्याग करना प्राय असंभव होता है। लेकिन आज देवराज जी की कृपा से असंभव चीज संभव हो गया है, और तुम्हारे पास नम्रता का यह अनमोल दिव्य रत्न आ गया है। इसका मतलब है नम्र होना यह हमारा सच्चा धन है। देखिए वैष्णव सिद्धांत कितना अलग है, कितना अद्भुत है। क्या क्या रत्न माने जाते हैं यहां पर। तो फिर उस समय रामानुजाचार्य ने यज्ञ मूर्ति को दीक्षा देने की तैयारी कर ली। यज्ञ मूर्ति ने अपने शरीर के ऊपर मुद्रा स्वीकार किए शंख चक्र गदा पद्म के, और फिर दीक्षा के समय रामानुजाचार्य ने उनको एक नया नाम दिया, देवराज मुनि, क्योंकि देवराज की कृपा से वो भी भक्त बने थे। और फिर उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप अभी नम्र बन गए हैं, आपका घमंड खत्म हो गया है, अभी आप इसी विद्वत्ता का उपयोग करके वैष्णव सिद्धांत का प्रचार कीजिए, आप ग्रंथ लिखिए जिससे कि लोग समझ जाएं कि विष्णु ही परम सत्य हैं और भगवान भी व्यक्ति हैं, उनकी भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। फिर उन्होंने दो ग्रंथ लिखे, ज्ञान सार और प्रमेय सार, और इस तरह से वो भी रामानुजाचार्य के आश्रम में उनकी सेवा करते करते रहे। इस तरह से श्रील रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते रहे। इस घटना के बाद में उन्होंने एक वैष्णव ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया अपने शिष्यों के साथ में, वो पढ़ते और शिष्यों को समझाते, और यह किताब का नाम था सहस्र गीति, हजार गीत, जो कि और एक महान अलवार ने रचना की थी जिनका नाम था नाम अलवार। और उनके कविताओं को, उनके स्तोत्रों को पढ़ते और बड़े सुंदर व्याख्या करते उनके ऊपर, और पढ़ते पढ़ते वो एक श्लोक तक पहुंचे जहां के नामावार श्री शैलपुरी, श्री शैल धाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे। जैसे हम पहले कह चुके हैं, श्री शैल मतलब तिरुपति, जहां वेंकटेश्वर या श्रीनिवास विराजे हुए हैं। तो उस श्लोक में नामलवार कहते हैं कि श्री शैल नाम का जो धाम है वो तो बिल्कुल वैकुंठ की तरह है। जो भी वहां रहता है हमें मानना चाहिए कि वो साक्षात वैकुंठ में रहता है, और फिर जब उसकी मृत्यु हो जाएगी वो सीधे नारायण के पास चले जाएगा। तो बार बार ये श्लोक का उच्चारण रामानुजाचार्य ने किया, और फिर बड़े भक्ति भाव से उन्होंने सोचा, अपने शिष्यों से पूछा कि क्या आप में से कोई तैयार है वहां श्री शैल में जाकर वहां निवास करना, वहां सुंदर फूलों का बगीचा उद्यान बनाना और ये सारे फूलों से श्रीनिवास वेंकटेश्वर की सेवा करना, आप में से कोई तैयार है? और आपके जीवन के अंत तक आपको वही रहना है, फूलों की सेवा करते रहना है बालाजी की, श्रीनिवास की। तो उस समय एक वहां उनके शिष्य थे जिनका नाम था अनंत आचार्य, जो बड़े चुपचाप रहा करते थे, कोने में बैठते थे, लेकिन वो अकेले तैयार हो गए। हां गुरुदेव, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी अनुमति हो, तो मैं श्री शैल जाने के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन के अंत तक मैं वहां पर निवास करूंगा और श्रीनिवास जी की सेवा फूलों से करूंगा, सुंदर फूलों का बगीचा मैं बनाऊंगा, उद्यान बनाऊंगा। और रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आलिंगन किया अनंताचार्य का और कहा कि मेरा जीवन धन्य है कि तुम जैसा शिष्य मुझे मिला है। अवश्य भगवान रंगनाथ जी की और श्रीनिवास की कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी, तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं। इस तरह से सहस्र गीते रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के संग में पढ़ते और सुनाते, समझाते, ऐसे तीन बार उन्होंने पढ़ लिया सहस्र गीते, एक के बाद एक के बाद एक। फिर तीसरी बार पढ़ने के बाद रामानुजाचार्य के मन में इच्छा हुई कि मुझे भी श्री शैल धाम में जाना चाहिए यात्रा के लिए, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों से बताया ये बात, और फिर वहां से वो आगे निकल पड़े। तो आगे चले यात्रा में, कहां कहां पर वो गए, और फिर अंत में जब वो श्री शैल में पहुंचे तो कौन सी घटनाएं वहां पर हुई, रास्ते में भी कौन सी घटनाएं हुई, ये सब अगर आपको सुनना है तो अगले एकादशी को आना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी दर्शन है, उसके बाद में अगर आपके किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद में प्रसाद, ठीक है? हरे कृष्णा। कब हुई?